ओम शांति। रामानुसार बहुत सुंदर पुरुषार्थ करने के लिए फुर्सत के दिन चल रहे, बहुत सालों से यज्ञ में हम देखते हैं कि कंटिन्यूअसली वर्ष भर के प्रोग्राम बनते रहे हैं और चलते रहे, बहुत निर्विघ्न रूप से। अब देखिए शांतिवन को ही 22 साल हो गए, तो कितने सालों से बाबा के घर में लगातार सेवाएं चली, सार्थक हो गया शांतिवन भी। हम अपने आप में कभी सोच नहीं सकते कि प्रोग्राम नहीं रखेंगे और पुरुषार्थ करेंगे, हो भी नहीं सकता है। इतनी बड़ी संस्था है तो कुछ तो एक्टिविटी चलनी चाहिए, तो ड्रामा ने मौका दे दिया। थोड़ी बहुत हम सबके हमारे लिए ही सेवा है, खाने पीने की है ना, वो तो खुद खुद के लिए हम कर रहे हैं। तो इसके बीच स्वयं को देखने का मौका मिला है। जब हम बाहर औरों से मिलने में व्यस्त नहीं हैं, तो अपने आप अटेंशन खुद पर जाता है। और खुद को इन दिनों में देखा तो महसूस भी हुआ होगा कि भल हम सबके पास ज्ञान है, हमें निश्चय है, बाबा से प्यार है, तभी तो समर्पित भी हुए, पर हमारी तपस्या में और शक्तिशाली रूहानी स्थिति में और कुछ अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। एकाग्र हम कैसे हों, क्योंकि हमारी एकाग्रता हठ दमन से नहीं है, समझ और लगन से है। निराकार के प्रति एकाग्र होना है, बेशक विकारों से वैराग्य है, पर टोटल वैराग्य व्यक्ति संपर्क वस्तु साधन वैराग्य इतना शक्तिशाली होना जरूरी है, तभी हम अंत तक ऊंची स्थिति पाने के जिगरी इच्छुक बने रहे। शुरुआत तो मन से हो जाती है आध्यात्मिक राह पर चलने की, पर अंत तक वो लगन रहे, अपने लक्ष्य को सिद्ध करने की, वो एक बहुत बड़ी बात। टाइम तो पास हो जाता है, जीवन भी गुजर जाता है, पर जीवन की सार्थकता तो इसमें है कि जिस लक्ष्य से हम चले उस लक्ष्य पर पहुंच। संगम युग अपने आप में ही सार है, पूरे ड्रामा का आधार ही संगम युग है। प्रैक्टिकल में जो कुछ करने का है वो करने का ये समय है, बाकी तो दो युग आधा कल्प उसकी रिजल्ट है, और दो युग द्वापर कलयुग उसकी यादगारें। द्वापर से भक्ति में जो भी पुरुषार्थ चला वो तो उसका यादगार क्रिया है। प्रैक्टिकल करने का समय संगम युग है, इसलिए हम कहते भी है ना कि चारों ही युगों का शूटिंग संगम युग में होता है, और उसमें भी संसार का सार स्वयं भगवान आते हैं। और ये सिर्फ बात नहीं है, सत्य है। कभी अकेले बैठकर एकांत में अपने आप से हम पूछे कि सच में भगवान मिला है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। ड्रामा की सर्वश्रेष्ठ घटना ये है कि भगवान सृष्टि पर आते, और हम उनको जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। अगर वो कुछ प्राप्ति नहीं कर रही है तो वो जानते ही नहीं है, पर हम बाबा के बच्चे, हम इस सत्य को जानते हैं कि साक्षात भगवान आए हैं, और ये वो ही परम पिता और वो ही आदि पिता, दो हस्ती ड्रामा की ग्रेटेस्ट, और हम उनके साथ हैं। इंसान को जीवन में जो कुछ चाहिए, क्या चाहिए, कुछ भी आप लिस्ट बना लीजिए, है ना, भौतिक, लौकिक, सांसारिक, दैहिक, आध्यात्मिक, जो कुछ भी चाहिए संपूर्ण मात्रा में, थोड़ा बहुत तो हर आत्मा कैपेसिटी अनुसार देता है, पर संपूर्ण मात्रा में सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में, अगर और कोई थोड़ी बहुत प्राप्ति कराते हैं वो भी उनका कोई श्रेष्ठ स्वरूप नहीं होता, क्योंकि खुद का लेवल ही श्रेष्ठ नहीं है। और अविनाशी मात्रा में वो प्राप्ति कराने वाला स्वयं देने आया है। भक्ति में बहुत प्यार से भगवान को कहा, पर वो आया नहीं था, भावना का ही फल मिलता है, खुद की भावना का फल मिलता है। भगवान के देने का समय अभी, और ऐसे समय में ऐसी परम शक्ति के साथ हम थोड़ी सी आत्मा है जिनको ये सारे राज पता चले। और तो अभी तक भी खोज ही रहे हैं, इस घटना के साक्षी और साथी हम सब हैं। इसलिए हमारे इस अलौकिक जीवन का सार यही है कि हम जितना अपने आप को भरपूर करना चाहे, ऊंचा उठाना चाहे, ब्रह्मा बाप समान बन जाना, एक संपूर्णता को प्राप्त कर लेना और जीवन को विश्व कल्याण के लिए, भगवान के रचे हुए इस भगीरथ कार्य के लिए सार्थक कर देना। शुरू से बाबा ने दो लक्ष्य हमें दिए, स्वयं को संपूर्ण बनाना और विश्व कल्याण के कार्य को संपन्न करना। केवल आत्म कल्याण हमारा लक्ष्य नहीं, आत्म कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याण, विश्व सेवा, क्योंकि ये समय है ना। जैसे कोई ऐसी योजना का आपको पता चले जो लिमिटेड टाइम के लिए है और बहुत ही बेनिफिट देने वाली है, तो एक नेचुरल होता है कि हम औरों को भी बताएं। हम मैक्सिमम हमारे संपर्क संबंध में आने वाले सबको बताएंगे कि ये भी लाभ ले ले, ये एक नेचुरल है। तो दोनों दृष्टि से अपना रिजल्ट हमें खुद देखना। संगम युग में जो अभी चल रहा है, इसमें हम खुद ही खुद के लिए जिम्मेवार। वो प्यारे बाप दादा के दिन, बाबा मम्मा के दिन, दादियों के दिन, बड़ी दीदियां और दादाओं के दिन, ये समय पूरा हो गया। अधिकतर वे सभी अपनी संपूर्णता की स्थिति पर पहुंच गए, गिने चुने हमारे बीच में रहे हैं। अब समय है खुद ही खुद को बनाना, खुद ही खुद का कर्तव्य अदा करना है। अब कोई कहने वाला नहीं। और समय अनुसार हमारी मनसा भी इस प्रकार की, आज के जनरेशन की आप देख रहे हैं कि किसी का कहा हुआ पसंद ही नहीं आता है। क्योंकि ऐसे समय में से हम गुजर रहे हैं जब व्यक्ति वेल इन्फॉर्म्ड है, सब कुछ जानते हैं, इसलिए सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं। जो विदेश में भाई बहने सेवा कर रहे हैं, अमेरिका वाली बहन बता रही थी कि उनको हम ज्ञान सुनाते हैं, वो भी उनको अच्छा नहीं लगता है, उनका ईगो हर्ट होता है कि हम अपने आप ही पढ़ लेंगे, हम अपने आप ही समझ लेंगे, उनको वो भी जैसे खुद के बारे में हिंता लगता है। क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी, तो नेचुरली बुद्धि इस प्रकार की बन जाती है कि बौद्धिक विकास है तो समझते हैं कि हम खुद ही करेंगे। पर यहां आध्यात्मिक शक्ति चाहिए, यहां सिर्फ बौद्धिकता नहीं चलती, यहां आध्यात्मिक बुद्धि चाहिए। ये वो बुद्धि है जिसमें अंधश्रद्धा भी नहीं है और बुद्धि का ईगो भी नहीं। और जगदीश भाई जी ने अपनी एक किताब में लिखा है कि जब तक हम परिपक्व बने तब तक हमारे पर किसी की नजर रहे वो जरूरी। अभी भी हम मधुबन निवासी भाग्यशाली, क्योंकि हमारे बीच बड़े हैं, भले कुछ कहे नहीं पर दिन रात हम उनको देखते हैं। देखने से ही कितनी अवेयरनेस आती। इन बड़ों को देखने से ही हमारे में कितनी जागृति आती है कि हमें कैसे चलना है, हमें क्या करना है। वरना संगम युग में आने के बाद भी, इस ईश्वरीय परिवार में आने के बाद भी, क्योंकि सेवा का बहुत विस्तार है, हैंड्स है नहीं, कई जगह ऐसे पक्के ज्ञानी भी कोई निमित्त नहीं, कई जगह हम मधुबन निवासियों का भाग्य है। अभी भी हमारे सामने आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं। भगवान ने जिनको फुर्सत से घड़ा वो क्रिएशन अभी भी हमारे सामने है। जो उनका आध्यात्मिक फाउंडेशन है, भगवान और यज्ञ से जो प्यार है, वो अभी भी हम उनसे सीख सकते हैं। हम भले यज्ञ में किसी भी कारण से आए, आप समझ सकते हैं हर एक अपने आप को। जरूरी नहीं हर कोई आध्यात्मिक उन्नति के लक्ष्य से ही आए, हर एक के अपने अपने लक्ष्य। नौकरी के प्रॉब्लम थे, आ गए उस दुनिया में, नौकरी करना नहीं चाहते, आ गए। घर वालों ने, सेंटर वालों ने बल भरा, आ गए। कुछ भी कारण से हम आए, माँ बाप के साथ आते रहते थे तो आ गए, सेवा में आए और यज्ञ निवासी बनने का सौभाग्य मिल गए। हम किसी भी कारण से आए, पर आने के बाद हम खुद खुद के लिए जवाबदार। आने के बाद हमने इसको गहराई से कहां तक समझा, फाउंडेशन ये। जब तक आप बाबा के मूल सत्य ज्ञान को गहराई से नहीं समझते हैं और बाबा के बताए हुए हर सत्य से कन्विंस नहीं होते हैं, विवेक से आप सहमत नहीं होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते, तब तक स्थिति नहीं बन सकती। आध्यात्मिकता का मार्ग एक ऐसा मार्ग है कि इसमें खुद की लगन और शक्ति से ही हम चल सकते हैं। तो हमारा ये नैतिक फर्ज कि जिस यज्ञ को हमने जीवन दिया, जिस ज्ञान योग को लाइफ के लिए स्वीकार किया, ये कोई टाइम बीइंग नहीं है, और संप्रदायों में तो कहते हैं ना कि जब वैराग्य आवे तो भगवा पहन लेने का, और वैराग्य खत्म हो जाए तो दुनिया भी पहन लेने का। ये चीज नहीं, हमने लाइफ के लिए जिस ज्ञान योग को स्वीकार किया, जिस संस्था को हमने समर्पण किया, जिस यज्ञ कार्य को हमने स्वीकार किया, हमारा पहला फर्ज फाउंडेशन उसको अच्छी तरह समझना, एक्यूरेट जैसा बाबा चाहते हैं वर्णन करते हैं मुरलियों में, उतने विस्तार और गहराई से समझना, क्योंकि इसके बिगर प्रैक्टिकल अवेयरनेस आएगी नहीं सदा के लिए। जो दादी जी भी कहते हैं कि, और दुनिया में भी कहते हैं कि, जो लोग सफल हुए हैं उनके अंदर ये हाईली डेवलप्ड सेंस थी कि मैं कौन हूं, कहां हूं और किस लिए। जो दादी कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मुझे क्या करना है, इसकी रियलाइजेशन चाहिए। ऐसा सत्य ज्ञान और दुनिया में और कोई दे नहीं सकता, ना और धर्म में, ना कोई गुरुओं से, ना वैज्ञानिकों से, कहीं भी नहीं मिल सकता। बाबा भी मुरली में बार बार कहते हैं ना कि बच्चे तुम जानते हो और नहीं जानते, क्योंकि जानने का रिजल्ट बहुत ऊंचा आना चाहिए। जो जानता है वो उनके जीवन में वो दिखता है। तो ज्ञान का हर सत्य जो बाबा ने समझाया है, हमारा इतना स्टडी हो, इतना अध्ययन हो कि हम समझ सके कि कौन सी बात किस अर्थ से, किस ऊंचाई से, किस महत्व से बाबा ने कही। क्योंकि उसके बाद बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक है। जो ज्ञान की सत्यता और सर्वोच्चता समझ जाएगा, उनकी बुद्धि किसी से प्रभावित तो होगी ही नहीं। ना कोई व्यक्ति से, ना कोई वस्तु, उसको कोई आकर्षण ही नहीं होगी। सत्य समझने का आनंद इतना होता है। उसकी बुद्धि और नजर कहीं डूबेगी नहीं, ये ऑटोमेटिक है। समझने का मतलब ही है अवेयर हो जाना, आत्मा का जाग जाना। और जो जाग गया वो फिर भूल नहीं करेगा। पता चल गया कि यहां से सावधानी से नीचे उतरो, स्टेप्स है, उसके बाद भी मेरा गिरना मीन्स मुझे समझ नहीं है या शक्ति नहीं, दो में से एक कारण। हमें रोज बाबा समझाते हैं, ये सौभाग्य तो है पर हम बाउंड है बाबा को रिजल्ट देने के लिए। बाबा कहते ना, आप स्वयं नहीं देंगे, ड्रामा कराएगा, करना भी पड़ेगा और भाग्य भी नहीं बनेगा, क्योंकि हमने भगवान का नहीं माना, समय अनुसार किया। बाबा मुरली में भी कई बार कहते हैं कि गवर्नमेंट युद्ध नहीं होता है तो भी मिलिट्री को बिठा के खिलाती है, पालना करती है। ऐसे नहीं भी आप घर चले जाओ, जब युद्ध होगा तो बुला लेंगे, ऐसा नहीं, वो पालना करती ताकि आवश्यकता पर एवर रेडी रहे, फिर ना नहीं कर सकते हैं। हम निवासी को आज यज्ञ में निवासी सबसे ज्यादा रहते हैं और नेक्स्ट सेवादारी रहे, बाकी सबको देखो कहा जाता है भाई आओ और 5 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, जाओ भाई। सेवादारी सबसे ज्यादा रहते हैं और हम निवासी रहते, तो बाबा की मैक्सिमम पालना लेने का सौभाग्य हम सबको। हमें भगवान समझाते हैं, भले कहने के लिए आत्माएं निमित्त होती हैं, ये करो ऐसा करो ऐसा करो, ये सेवा, ये पुरुषार्थ, ये धारणा, ये तपस्या। बाबा के ये महावाक्य सुनाने के लिए कोई आत्माएं निमित्त होती, सेवा देने के लिए आत्माएं निमित्त होती है, पर यज्ञ किसका, कारोबार किसका, और हम मधुबन में अनुभव करते हैं कि एक तो इस भूमि का प्रताप, भगवान की भूमि, इस भूमि पर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, भगवान की भूमि, उसका अपना एक बल हमें मिल रहा है, दादियों की तपस्या, उसके फल हम खा रहे हैं। सेंटर में ये भाग्य नहीं है, वहां फिर भी फील करते हैं कि हमें सेंटर चलाने में हमें मेहनत करनी होती है। हमारी सेवा से ज्यादा बाबा हमें दे रहा है, आप भी महसूस करते होंगे। ये हमारी सेवा से ज्यादा, हमारी हैसियत से ज्यादा बाबा हमें दे रहा है। और यहां जो कुछ है, धन दौलत साधन सुविधाएं या मान सम्मान, हम मधुबन निवासियों के प्रति जो सेवा करके जाते हैं, उनको अनुभव होगा कि कितना ऊंची नजर से सब देखते हैं सेंटर के और भाई बहने, कि भाई मधुबन सेवा करके आए। हमें जो भी मान सम्मान स्थान महिमा हो मिल रहा है, आप क्या समझते हैं? सिर्फ हमारे अपने कारण मिल रहा है? हर एक महसूस करते हैं ना कि बाबा के कारण, मधुबन निवासी के हिसाब से मिल रहा है। माना सिर्फ भाग्य की बात नहीं है, ये बाबा की भी देन है। मैं ये बताने चाह रही हूं कि हम सिर्फ ये ना समझे कि हमारे भाग्य से मिल रहा है, ये बाबा की देन, महातपस्वी दादियों की तपस्या की देन, हमारे और जो बड़े हैं जो आज जिम्मेवार बन के संभाल रहे हैं हमें, तो मुझे क्या रिजल्ट देना है? तो मेरे तरफ से क्या रिजल्ट हो? मेरी रियलाइजेशन क्या हो? क्योंकि इन चीजों को महसूस किए बिना ये कॉमन लगेगा आपको। जैसे दुनिया में आजकल कई ऐसा जवाब दे देते हैं ना माँ बाप को कि क्या है, आपने पैदा किया है तो पालते हैं, है ना, ऐसा अविवेकी जवाब देते। हमें महसूस करना पड़े कि यज्ञ जीवन क्या चीज है। आज सेंटरों में जाते हैं तो पता चलता है कि मधुबन में क्या है और सेंटर में क्या है। जो घरों में जाके आते हैं उनको भी पता है लौकिक में क्या है और यहाँ क्या है। तो महसूसता, इसको हम समझे हमें क्या मिल रहा है और इसका महत्व। मैं तो ये स्थूल बातें बताई, पर आध्यात्मिक दृष्टि से यज्ञ निवासी बनने से यज्ञ का हमें क्या क्या वायुमंडल मिल रहा है। भूमि की शक्ति, वातावरण में आध्यात्मिकता, दिन रात दादियों की पालना, विश्व भर की आत्माओं से यहां बैठे हम मिलते हैं, कितनी बातें जानने सीखने को मिलती। हम गुजरात में थे, गुजरात की टोली मिठाई खाते थे, मधुबन में आए विश्व भर की मिठाइयां खा रहे, टोली खा रहे। मैंने एकदम स्थूल बात में बताऊं, कितना बेहद में हम चले जाते। यज्ञ का भोजन हमें मिलता है, और ज्ञानी आत्माओं का संगठन मिलता है। बल नंबर वार है, और भगवान को तो जानते हैं, उसमें तो निश्चय है। बल निश्चय के बाद कुछ कर नहीं रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, पर निश्चय तो है ना, भगवान पढ़ा रहा है। दुनिया तो वो साथ देगी नहीं ना, जो ज्ञान में नहीं है उनसे तो ये साथ मिलता नहीं ना, कम से कम सपोर्ट मिलता है ना यहाँ हमें कि हम भगवान को जान चुके। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण बनने की सभी सुविधाएं हमें मधुबन में मिलती हैं। हमें जैसे स्पेशली बाबा ने है ना अपने पास रखा कि आपको और कुछ चिंता नहीं, और कुछ करना नहीं है, आपको एग्जाम्पल बनना है, बेस्ट सैंपल बनना है, उदाहरण बनना। आना जो हमारे जीवन का सार है, बाप समान बनना और बाबा को प्रत्यक्ष करना, ये दोनों उद्देश्य को प्रैक्टिकल करने के लिए हमें मधुबन में सभी सुविधाएं। हमें सिर्फ खुद की जिम्मेवारी लेनी है, हमें सिर्फ खुद की जिम्मेवारी लेनी है। आज सेवाओं में, सेंटरों में कितनी मेहनत है, गांव गांव जाना, मेहनत करना, पाठशाला खोलना, प्रोग्राम करना, कितनी मेहनत है। हमें तो कहीं जाना नहीं है, लोग आते हैं, लोग बदलते हैं, है ना। हमें अपने मन बुद्धि को फ्रेश रखना, हमें अपने आप को कैसे ज्ञान योग से और सेवा से रिफ्रेश रखना है। और बाबा कहते हैं ना कि यहां रहना माना शोकेश में रहना। बाबा कहते हैं वे बेस्ट सैंपल को शोकेश में रखा जाए। हमें वो रिजल्ट देना है बस, लोगों को कोई कारण ना मिले ये बातें हैं इसलिए पुरुषार्थ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हमें वो एग्जाम्पल बनना है कि कोई भी सेवा करते हुए मधुबन के कोने में रहा हुआ आत्मा भी ऊंचा उठ सकता है। हमें वो रिजल्ट देना है। हमारे जीवन का सार ये है। हम इतना अपने स्वरूप में स्थित रहे, हम इतना बाबा से अटैच रहे, हम इतने यज्ञ के कैरिंग हों, संभाल करने वाले हों, जो हर किसी को कोई ना कोई एग्जाम्पल मिल जाए। मैं ये इसलिए सारा बता रही हूं कि हमें कॉन्स्टेंट ये रियलाइजेशन रहे, अवेयरनेस रहे, प्रैक्टिकल अपने आप पर अटेंशन रहे और हमारा अभ्यास इतना हो कि हम हरेक अनुभव की ऑथोरिटी बन सके। माना जो चीज मेरे से ना मिले वो इनसे मिले, इनसे ना मिले वो इनसे मिले, किसी से भी मिल जाए ऐसा हमारा संगठन हमें बना। तो समय की मार्जिन हम सब देख रहे हैं। अंतिम समय की जो बातें हम करते हैं वो प्रैक्टिकल आ चुका, जैसे वो गेट खुल गया अंतिम समय में आने वाले परिस्थितियों का जो वर्णन बाबा सदा करता रहा है, और जितनी परिस्थितियां हलचल की बढ़ेगी हम स्वस्थिति बना नहीं सकेंगे, ये समझ लेना। क्योंकि परिस्थितियों की हलचल बढ़ेगी, घबराहट, डर, परसेंटेज में वो आएगा, प्रभाव करेगा। बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है कि अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अंत को बुद्धि में रखकर अभी पुरुषार्थ कर लेना। अंत में पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, अंत में तो खुद को भी महसूसता होगी कि हमने संगम युग में क्या किया। हमने संगम युग में भगवान का बनकर हमने दिन रात क्या किया। बल किसी ने देखा या नहीं देखा, हिसाब लिया या नहीं लिया, पर खुद को हिसाब मिल जाएगा। इसलिए एक तो खुद के कर्मों की रियलाइजेशन शुरू हो जाएगी और हलचल, आत्माओं के वाइब्रेशंस, उसमें हम पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। और बाबा ने यह भी कहा था कि मनसा सेवा भी नहीं कर सके, क्योंकि वो आत्माएं रिसीव नहीं कर सके, उनको प्राप्ति चाहिए, अनुभूति चाहिए, वो लेने की परिस्थिति में नहीं होंगे। यही समय है, इससे पहले का समय था। इसलिए फिर भी ये ड्रामा ने एक्स्ट्रा चांस दे दिया। यज्ञ के इतिहास में समझो अप्रैल से लेकर इतना लंबा समय यज्ञ कभी खाली रहा ही नहीं। ये यज्ञ के इतिहास में पहली बार है। ये मौका है, इसलिए बिना गहरे ज्ञान, बिना लगन, बिना वैराग्य, बिना खुद की दृढ़ता के हम स्थिति नहीं बना सकते। ये सब चाहिए, और वो है तो कुछ भी आपको हिला नहीं सके, चाहे कितने भी नंबर वार ऊपर नीचे देखने में आ जाए, आपको कोई असर नहीं, क्योंकि आपकी वो दिशा ही नहीं है, आपको वो करना ही नहीं है जो कोई कर रहा है। आपको तो दिन रात वही लगन है कि बाबा क्या कहते हैं और मुझे क्या कहना, समय क्या कह रहा है, भगवान क्या कह रहा है और मुझे क्या करना है, बस। और आपकी ऑटोमेटिक शुभ भावना रहे। सबके लिए शुभ भावना रहे, आप स्थिति का, वाइब्रेशन का सहयोग दे सके। तो ये मौका है भट्टी का, सभी बातों से फारिग होकर बैठते हैं, तो ये सब देखना है, रियलाइज करना है। ऐसे ही कोई बाबा बाबा याद नहीं, ये महसूस करना है, अपना रिजल्ट देखना है। और क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, क्या विचार है मेरा, खुद खुद से बात, खुद को सिखाना है, समझाना है कि क्यों यज्ञ में आने के बाद मेरी कमिटमेंट क्या है, मेरी वचनबद्धता, प्रतिबद्धता क्या होनी चाहिए, क्यों नहीं है। मैक्सिमम प्राप्ति हमें कर लेनी, बिना रियलाइजेशन, बिना वैराग्य न आपका स्वमान टिकेगा न स्थिति टिकेगी। अब हम अभ्यास करेंगे, बिल्कुल साइलेंस में एकाग्र रहते हुए धीरे से खड़े हो जाए। हाथ पांव ठीक कर लीजिए,
कमर ठीक कर लीजिए, हर कोई शरीर की एक्सरसाइज जानते हैं, खुद ही खुद के लिए कर लीजिए। दो दो की जोड़ी बन जाइए, आपको एक्शन करनी है बस, डिस्टेंस रखते हुए और आवाज में नहीं। दो दो की जोड़ी बन जाइए, आ जाओ, जिसको जोड़ी ना हो हाथ ऊपर करे और एक दो को बना ले। एक दो को नमस्ते करिए, बोलना नहीं है, टच नहीं करना है, बहुत भावना से और ऊंची नजर से करना। हैंडशेक करिए, मिलाना नहीं, एक्शन ही करना है, डिस्टेंस रखना है ना सबको, टच नहीं करना है। सलाम मालेकम करिए, ओम शांति कहिए, आवाज नहीं, मुस्कुराइए, अपनी पीठ थपथपाइए, पार्टनर को शाबाश कहिए हाथ लगाए बगैर। बाबा के सामने हो जाए, राइट साइड घूम जाइए, राइट साइड घूम जाइए, नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने, पहला पहला अभ्यास, एक सत्य ज्ञानी आत्मा होने के नाते डायरेक्ट परमात्मा योगी होने के हिसाब से सर्वोच्च स्थान मधुबन में होने के नाते भगवान के साथी बनने के हिसाब से आपका इनर वॉइस आपको क्या कह रहा है? आपका अपना अनादि शुद्ध स्वरूप आपको क्या कह रहा है? राइट साइड घूम जाइए, दूसरा अभ्यास स्वयं भगवान मुझे क्या कह रहा है? याद करें, महसूस करें, भगवान का आदेश क्या है? और राइट साइड घूम जाए, तीसरा अभ्यास दुनिया किस नजर से आपको देख, लौकिक परिवार, दुनिया की आत्माएं हमसे क्या चाहती है। बाबा के सामने हो जाए, चौथा अभ्यास संगम युग का वर्तमान क्या कह रहा है। समय का आदेश क्या है, बैठ जाए। पांचवा अभ्यास मुझे क्या करना है। गहराई से इन महसूसताओं को बुद्धि में रखते हुए मेरा अपना विवेक मुझे क्या कह रहा है, स्वयं भगवान क्या कह रहा है, दुनिया किस नजर से हमें देख रही है, उनकी क्या अपेक्षा है, और वर्तमान समय क्या कहता है। अब मेरा क्या विचार है, मेरा खुद का खुद से क्या फैसला है। बाकी जिंदगी में मुझे क्या करना है, की डायरी में पांच वाक्य में लिख लीजिए। अपनी डायरी में देखें, अपना फैसला पांच लाइन में लिखें। मेरी अंतर आवाज क्या कहती है, भगवान वच क्या है, समय की पुकार क्या है, दुनिया क्या चाहती है, मुझे क्या करना है। स्वयं को जवाब दे, बाबा को जवाब दीजिए, विश्व की आत्माओं को जवाब दीजिए, समय को साथ दीजिए। रोज अमृत वेले योग के बाद इसे रिवाइज करें, मेरा प्रत्युत्तर क्या है, मुझे क्या करना है, स्वयं को, बाबा को, विश्व को, समय को, सही प्रैक्टिकल उत्तर देना, यही मेरे जीवन का सार है, सत्व है, एसेंस है। खुद बाबा को अब मन से बताइए, लिख लिया होगा, अब सामने बाबा से प्रॉमिस कर लीजिए।